ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत का टीकाकरण अभियान, सार्वभौमिक वैक्सीन कवरेज और स्वास्थ्य समानता के लिए प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भारत निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। आज भारत का टीकाकरण अभियान, सार्वभौमिक वैक्सीन कवरेज और स्वास्थ्य समानता के लिए प्रतिबद्धता विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के डॉक्टर एनके अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले टीकाकरण के महत्व से तो अधिकांश लोग परिचित हैं, क्योंकि भारत में ये काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन तब भी आज सार्वभौमिक या व्यापक टीकाकरण क्यों जरूरी है, इस पर हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे आप?
टीकाकरण ज्यादातर जो है बच्चों के लिए किया जाता है। इस देश में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय हम टीबी का टीका लगाते हैं, साथ में पोलियो का और जॉन्डिस से बचने का टीका, और उसके बाद फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे होता है, फिर 9 महीने पे होता है, फिर 1.5 साल पे होता है, फिर 5 साल पे होता है। और लगभग जो भी हमारे बच्चों के लिए टीके उपलब्ध हैं दुनिया में, वो सारे के सारे टीके अब हमारे बच्चों को भी उपलब्ध हैं। एक समय था जब 20-20, 30-30 साल लग जाते थे कि कोई टीका दुनिया के दूसरे हिस्सों में होता था, लेकिन अब हमारी टीकों की उत्पादन क्षमता इतनी अधिक है कि हम खाली अपने देश के बच्चों के लिए टीके नहीं लगाते। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि दुनिया में जो 3 टीके बिकते हैं उसमें से 2 टीके भारत में बने हुए होते हैं। ये बहुत गर्व की बात है। आपने पूछा टीकों का महत्व।
जी, सार्वभौमिक जो व्यापक टीकाकरण या कहते हैं जब हम कि सार्वभौमिक टीकाकरण होना चाहिए, तो जैसे एक उदाहरण लें अगर हम, जैसे पोलियो का अगर हम देखें उन्मूलन लगभग, या चेचक पुरानी बातें कर याद करें हम, तो उसका जिस तरह से उन्मूलन हुआ तो उस पर टीकाकरण की ही भूमिका है।
टीकाकरण को मैं एक इंश्योरेंस की तरह कहूंगा। जब मैं अपने बच्चे को टीका लगाता हूं तो एक तरीके से उसके स्वास्थ्य के लिए मैं इंश्योरेंस कर रहा होता हूं। बीमारियों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय टीकाकरण है, और ये 20वीं सदी और फिर 21वीं सदी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक व्यापक भी और साथ ही साथ इफेक्टिव जो कार्यक्रम है। और ये भी हम सबको जानने की जरूरत है कि सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, स्वास्थ्य की छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य के अलावा भी जितने कार्यक्रम हैं, टीकाकरण सबसे व्यापक कार्यक्रम है। हिंदुस्तान के लगभग 94% बच्चों को कम से कम एक टीका लग जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
इसमें भारत की अभी की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से क्या स्थिति है, कहाँ बेहतर हालत है और कहाँ अभी कुछ बेहतरी की गुंजाइश है?
कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो सन 2014 में, आज से 10 साल पहले, केवल 62% या 63% बच्चों को पूर्णता उनका टीकाकरण पूरा होता था, जितने उनको टीके चाहिए उतने मिलते थे। लेकिन आज 10 साल बाद लगभग 92-94% बच्चों को सारे टीके मिल चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारी दुनिया इसको एक आश्चर्य के रूप में देखती है और एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती है कि भारत में टीकाकरण को इतना महत्व दिया है, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से टीकाकरण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आपने कहा कि कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बहुत अच्छा है, तो आमतौर पे अब हम देखते हैं तो टीकाकरण लगभग सारे देश में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ प्रदेश और जिले जहां पर टीकाकरण की समस्या है। दक्षिण के ज्यादातर जो प्रदेश हैं उनमें बहुत अच्छा है टीकाकरण, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उत्तर में हिमाचल प्रदेश है उसमें बहुत अच्छा टीकाकरण है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बिहार में और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में अभी भी टीकाकरण में और मेहनत करने की जरूरत है और टीकाकरण का जो स्तर है उसको बेहतर करने की जरूरत है।
जी, आपने बिहार का उल्लेख किया है, तो पटना से आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, बताएं कि बिहार में टीकाकरण की क्या स्थिति है?
अरोड़ा जी जैसे बिहार का उल्लेख कर रहे थे, तो 89% के आसपास जो टीकाकरण है बिहार में है, और ये जो है 100% का लक्ष्य छूना चाहिए, लेकिन बिहार में बहुत सारी बाधाएं हैं इस क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर। और ये जो रिपोर्ट मैं देख रहा था ये 2023-24 की है, तो कोविड का जो प्रभाव देखा गया जो 2 साल पहले तक जो है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन है, उस समय टीकाकरण में कमी आई। दूसरी चीज है कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है, तो वो भी एक बड़ी बाधा है, क्योंकि जो बुनियादी संरचनाएं हैं, छोटे अस्पताल है, CHC है, PHC है, वो प्रभावित रहते हैं। दूसरी चीज जो है, मतलब आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, इन लोगों को वहां पर जाने में दिक्कत होती है, कठिन क्षेत्रों में जहां पर बाढ़ से घिरा रहता है, और देखा जाए साल भर में 2.5-3 महीने बाढ़ से प्रभावित रहते हैं क्षेत्र, जल प्लावित रहते हैं, तो एक ये समस्या है। दूसरी जो आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये हमारे फुट सोल्जर है जो जाकर दुर्गम क्षेत्रों में टीका लगाते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को प्रेरित करते हैं। पिछले कई वर्षों से इनका जो है मानदेय है बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल देखा गया, तो ये इन सब चीजों में रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि सरकार इतने प्रयास कर रही है फिर भी कमी देखी जा रही है। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन जो है इलिटरेसी के चलते बिहार में लोगों तक जो हम इतने चमत्कारिक प्रभाव है जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर टीकाकरण, उन बातों को लगता कहीं ना कहीं हम ट्रिकल डाउन नहीं करा ग्राउंड लेवल पर। जैसे कि जो PCV टीका है, न्यूमोकोकल का जो कंजुगेशन, जो वायरस का, रोटा वायरस का, मेजल्स और रूबेला का, तो ये एक मतलब जो अचीवमेंट के बारे में बताना चाहिए कि हमें मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है इसको कवर कर रहे हैं। और अगर बाहर के कंपेरिजन करें तो टीकों की कीमत काफी है, तो सरकार मुफ्त में इस मिशन के तहत टीके दे रही है, तो लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी। और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों में शिक्षा का अभाव है, इसके कारण जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का सिस्टम है वो प्रभावित रहता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं अस्पतालों में नहीं लेते हैं, तो इसके कारण रेगुलर जो टीकाकरण होना चाहिए समय समय पर वो नहीं हो पाता है। ये जो ग्राउंड पर हम लोग सिचुएशन देखते हैं, कुछ कारण इसको माने जा सकते हैं।
जी, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र राय, पटना से आकाशवाणी संवाददाता, जो वहां की जानकारी दे रहे थे। और इसके साथ अब जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी संवाददाता गुलशन रैना जी। गुलशन जी, बताएं वहां क्या स्थिति है टीकाकरण की।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने नियमित टीकाकरण पर केंद्रित सघन मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 के दूसरे चरण के दौरान अपने टीकाकरण के लक्ष्य को पार कर लिया है। IMI के दूसरे चरण का आयोजन 11 से 16 सितंबर 2024 तक किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश ने इस चरण में टीकाकरण के लिए नियोजित 3,188 सत्रों की जगह 4,132 सत्र आयोजित किए, जिसमें 6,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के लगभग 34,000 बच्चों का टीकाकरण किया गया। IMI 5.0 के पहले चरण में भी जम्मू कश्मीर में इस तरह का प्रदर्शन देखा गया था, जहां 95% लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक भारत से खसरा रूबेला बीमारी खत्म करना है।
अब आगे हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं, तो ये है कि टीकाकरण के लिए अगर हम देखें तो जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे बिहार के हमने जाना, तो एक तो है कि जागरूकता बढ़ाने की बात होती है, दूसरे की मुश्किल इलाके हैं, और उसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की भी बात है। तो टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और समुदायों, इनके बीच में बेहतर समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है।
पहली तो ये है कि पिछले लगभग एक दशक में ये संवाद पहले से बहुत बेहतर हुआ है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि जो आशा बहन जी है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है, बच्चों को लेके आते हैं और उनका टीका लगवाने में, तो उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो समाज में जागरूकता पैदा करना है, और साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो ये है कि लोगों के मन में भ्रांतियाँ भी कई बार पैदा हो जाती हैं टीकाकरण से संबंधित। चाहे कुछ टीके के बाद हल्का सा बुखार हो जाता है तो उसकी वजह से माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, या मिस इन्फॉर्मेशन, गलत बातें होती हैं, र्यूमर्स होती हैं, तो उनका निराकरण करना भी अत्यंत आवश्यक है। और इसमें आशा बहन जी और ANM बहन जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि वो समाज के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं और समाज का हिस्सा हैं। तो वहां पर अगर और मेहनत करी जाए प्रदेश की तरफ से और राष्ट्र की तरफ से, जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें और चुस्तता लाने की जरूरत है।
जी, आपने बताया कि जैसे लोगों में जो गलतफहमी है टीकाकरण को लेकर, या जागरूकता की कमी है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका एक जो पुराना पहलू था वो था कि चलिए वो कुछ अशिक्षित लोगों के बीच में इस तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन अब एक नया दौर आया है, सोशल मीडिया पर भी है, जिसमें कि टीकों के खिलाफ एक तरह से मुहिम छेड़ने वाले लोग पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं।
हाँ।
ये अद्भुत है, लेकिन विज्ञान इसका जवाब दे रहा है। तो टीकाकरण के प्रति लोगों की जागरूकता और इन्फॉर्म्ड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें जो अविश्वास है उसको कैसे दूर कर सकते हैं।
इनफैक्ट 2010 में WHO ने और 2015 और 20 के बीच में WHO ने दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात किया और उसमें एक समस्या यही थी कि टीकाकरण के प्रति अविश्वास, जनता में जो विश्वास की कमी होती है और उसके लिए लगातार काम करने की जरूरत है। समय समय पर जिस तरीके से एक इनोवेशन नवाचार चल रहा होता है चीजों को अच्छे तरीके से, इसी तरीके से जो वैक्सीन के अगेंस्ट हैं उसके विरोध में हैं उनके दिमाग में भी नवाचार चल रहा होता है, नए नए तरीके के धारणाएं बनाते हैं, उनकी एक तरीके से मॉनिटरिंग करने की जरूरत होती है और इसमें एक प्रोएक्टिवनेस चाहिए होती है और छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कहीं लग रहा है कि टीके के विरुद्ध कोई बात चल रही है या बात में गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं तो उसको पहले पहचानना है और तुरंत उसका निराकरण कई तरीकों से करना है, अपनी आशा बहन जी के थ्रू, ANM के थ्रू और मास मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। और यही कारण था कि हमारे देश में कोविड का टीकाकरण बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उसका कारण यह था कि इस सारी चीजों को प्रोएक्टिवली हमने असेस किया और उसको छुपाया नहीं। तो हम लोगों को ये एक समस्या है लेकिन सौभाग्य की बात है कि भारत में टीके के प्रति जो एक एक्सेप्टेंस है वो बहुत अधिक है और देशों के मुकाबले, लेकिन बीच बीच में कुछ लोग हैं, कुछ जगह हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर ये एक समस्या है, ज्वलंत समस्या है और इसका हमें हमेशा के तौर पर इसका सामना करने की जरूरत है।
जी, आपने अभी कोविड का उल्लेख किया तो भारत में COVID-19 महामारी के बाद टीकाकरण कार्यक्रमों में क्या कुछ बदलाव आया है?
हमारे जो बिहार से मित्र बोल रहे थे वो एक बहुत सही बात कह रहे थे, 2020-21 में टीकाकरण में बड़ा झटका आया क्योंकि हमारे सारी चीजें बंद हो गई थी, लेकिन भारत उन देशों में से एक देश था जिसने अप्रैल 2020 में एक ऑर्डिनेंस निकाला कि टीकाकरण जो है उतना ही जरूरी है जितनी स्वास्थ्य की कोई भी और सेवा या देश की रक्षा के बराबर, उसके लिए ऑर्डिनेंस निकाला था। तो टीकाकरण को बहुत महत्व दिया गया है लेकिन उसको ऊपर उठने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन 2022-23 तक ज्यादातर टीकाकरण अपने पूर्व स्तर पर आ चुका है। दूसरी चीज, उस बीच में कुछ लोगों को जैसे खसरे के टीके रह गए थे और इसकी वजह से 2022-23 में बहुत सारे लोगों को खसरा की महामारी जैसी फैल गई थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में और बाकी देश में भी था, गुजरात में, महाराष्ट्र वगैरह में। लेकिन अब उन सब चीजों का निराकरण कर लिया गया है और इस समय जैसे कि मैंने बताया कि 12-13 वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को दी जा रही हैं, जिसमें डायरिया की वैक्सीन है, जॉन्डिस की है, काली खांसी की है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, और वो ये कि टिटनस हमारे देश से उसका उन्मूलन कर दिया गया है, बच्चों में टिटनस से बहुत मृत्यु होती है। आपने पोलियो का उदाहरण दिया था और चेचक का दिया था, उसमें टिटनस भी आता है। तो कुल मिलाकर के हमारा टीकाकरण कार्यक्रम, हम इस पे बहुत गर्व करते हैं, लेकिन ये जो बीच बीच में समस्याएं हैं और खासतौर पे टीकाकरण के जो विरुद्ध काम करने वाले हैं उनको समझने के लिए और उसके लिए लगातार उपाय करने की जरूरत रहती है।
तो क्या सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया सकता है, जैसे डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग है या मोबाइल एप्स हैं या दूसरे जो तकनीकी उपाय हैं, उनसे क्या कवरेज को बढ़ाया जा सकता है?
आपने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा और इस बात को करते हुए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दुनिया में भारत अकेला कुछ कम देशों में था जिसमें कोविन जैसा IT प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब इसी IT प्लेटफॉर्म को बच्चों के टीकाकरण और बाकी देश में जितने भी टीकाकरण है उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको यूविन कहते हैं। और यूविन से एक तरह से हमारे पास मास्टर लिस्ट बन जाती है, जिस भी बच्चे को टीका दिया गया है, जो रह जाता है बच्चा उसके बारे में भी मालूम होता है और हम उसको याददाश्त दिलाते हैं। तो इससे हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में हम लगभग सार्वभौमिक, जो शब्द आपने बहुत सुंदर यूज किया कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, सार्वभौमिक टीकाकरण हम करने में सक्षम होने की स्थिति में होंगे।
जी, डॉक्टर एन के अरोड़ा हमारे स्टूडियो में आने और बहुमूल्य जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत का टीकाकरण अभियान, सार्वभौमिक वैक्सीन कवरेज और स्वास्थ्य समानता के लिए प्रतिबद्धता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य डॉक्टर NK अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।